तुलसीदास अंतरंग साक्षात्कार के कुछ आयाम। गोस्वामी तुलसीदास का रचना संसार और उनका रचनात्मक व्यक्तित्व तो बहुआयामी और बहुत विशद है। एक ही रचनाकार मानस की अभिव्यक्ति होने के बावजूद उनमें पर्याप्त वैविध्य भी है। इस विविधता का संबंध अंतर्वस्तु से भी है और रूप तथा शिल्प से भी। वस्तुतः अपने समुचे रचना काल में गोस्वामी जी ने एक ही रचना की है, राम जिसके केंद्र में है। गो की राम की इस कथा को और राम से अपने संबंधों को उन्होंने अलग अलग ढंग से अलग अलग त्योरों में व्यक्त किया है। उनकी अलग अलग मनोदशाओं में राम उनसे मुखातिब हुए हैं या वे राम के सामने आए हैं। राम सीता समेत गोस्वामी जी के मन में सरोपर हैं। उसके बाद ही राम से जुड़े उनके आत्मीय प्रियजन परिजन भक्त आदि गोस्वामी जी के आराध्य बन सके हैं। इतना अवश्य है कि राम और सीता के बाद गोस्वामी जी के यहाँ आराध्य के रूप में सरोपर वरीयता राम के अनन्य भक्त हनुमान की है, जिन्हें उन्होंने राम की ही भांत नाना रूपों में स्मरण किया है और अपनी आराधना का विषय बनाया है। राम कथा की केंद्रीयता में ही गोस्वामी जी की कृतियों में उनका समाज दर्शन भी व्यक्त हुआ है और राम के समक्ष ही गोस्वामी जी अपने आत्मदर्शन को लेकर भी आए हैं। कथा काव्यों में या उन काव्यों में जिनमें राम के साथ राम से जुड़ी कथा का आख्यान हुआ है, तुलसीदास के रचनाकार से या उनके भक्त या मनुष्य से अंतरंग साक्षात्कार करने में हमें कुछ जहमत उठानी पड़ती है, कोशिश करनी है कि और फिर भी यह पहचान मुकम्मल नहीं हो पाती। हमें बराबर ऐसा एहसास होता रहता है, किंतु जिन रचनाओं में राम या उनके आराध्य के बीच और कोई नहीं होता, महज वे और उनका आत्मनिवेदन होता है, जहां वे भक्त और महज भक्त मनुष्य होते हैं, उनमें गोस्वामी जी से हमारा परिचय नितान सहज नितान्त आत्मीय एकदम पारदर्शी और एकदम अंतरंग होता है। ऐसा कि जैसे हम उन्हें छू सकते हो, उनके हृदय की धड़कने सुन सकते हो, ऐसे अंतरंग परिचय के क्षण जब तब हमें उनकी अन्य रचनाओं में भी उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु बहुत कम। जिन रचनाओं में हम पूरी हार्दिकता और अनन्यता से गोस्वामी जी का अंतरंग साक्षात्कार करते हैं, उनमें विनय पत्रिका और हनुमान बाहक मुख्य है। इन कृतियों में परिचय के अंतरंग क्षणों की आवृत्ति पर आवृत्ति है, लगातार उस परिचय को सघन और गाढ़ा करते हुए। संप्रति हम इन्हीं दो कृतियों को केंद्र में रखकर गोस्वामी जी से हुए अंतरंग साक्षात्कार के कुछ विशिष्ट आयामों को उभारना और रेखांकित करना चाहेंगे। यद्यप गोस्वामी जी की रचनाओं का कोई निश्चित और प्रामाणिक विकास क्रम हमें उपलब्ध नहीं होता और इस विषय में अधिकतर अनुमानों पर निर्भर रहना पड़ता है, किंतु फिर भी रचनाओं की अंतर्वस्त के मद्देनजर गोस्वामी जी की रचनाओं के मर्मी और प्रमुख समीक्षक प्रखर समीक्षक रमेश कुंतल मेघ ने उनके सृजनात्मक कार्य के दो मुख्य चरण माने हैं और हमें डॉक्टर मेघ की निष्पत्ति मान्य है। उनके अनुसार गोस्वामी जी के सृजनात्मक कार्य का पहला चरण वह है जब वे केवल आदर्शवादी हैं, महाकाव्यात्मक भव्यता तथा आध्यात्मिक उन्मेष में महत्व ललित रचना करते हैं, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न आदि इसी चरण की देन है। दूसरे चरण में वे आदर्श से यथार्थ की ओर मुड़ने लगते हैं, उल्लास से गांभीर्य की ओर बढ़ते हैं और मानस के परब्रह्म राम की परम पद दायक गाथा के स्थान पर कवितावली की लोक मंगल के नायक श्री रघुनाथ का जीवन गान गाने लगते हैं। इस चरण में उनकी महाकाव्यात्मक भव्यता का स्थान वेणु गीतात्मक लिरिकल वैयक्तिकता ले लेती है। आध्यात्मिक उन्मेष वाली आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ साथ नैतिक प्रायश्चित पश्चाताप तथा सामाजिक संदेह तर्क आदि का भी समावेश हो चलता है। इसी वेणु गीतात्मक चरण में वे अपनी आत्मकथा कहने और समाज की निर्भांत आलोचना करने की नई जीवन दृष्टि और सामर्थ्य पाते हैं। इसके साथ वे यथार्थ की ठोस भूमि पर उतरते चले जाते हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवय, दुहावली, सत्सई, हनुमान बाहुक आदि मुक्त कृतियां इस चरण की देन हैं। प्रस्तुत आलेख में हमें इन कृतियों के अंत साक्ष्य पर गोस्वामी जी की आत्मकथा की विपरीत नहीं करना है। इसके विपरीत हम चाहेंगे कि विवेच कृतियों के साक्ष्य पर हम आदर्शवाद की भव्यता गोस्वामी जी के उज्ज्वसित मनोलोक और उसमें आकर पाई हुई तथा मूर्त हुई उतनी ही भव्य कल्पना और यूटोपिया के बरक्स यथार्थवाद और उसके तहत स्पष्ट होने वाली उनके अपने समय की बदरंग दुनिया के उनके अपने साक्षात्कार से उपजे तथा उसकी पृष्ठभूमि में आलोकित होने वाले उनके आत्मदर्शनार्थ में बिंबित उनके मोहभंग की उस मार्मिक तस्वीर को उभारे जिस बंद पर गोस्वामी जी हमें अपने उतने निकट लगते हैं, हमारे उतने आत्मीय बन जाते हैं, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। जन्म के समय से लेकर शैशव और उसके आगे भी लंबे दौर की दरिद्रता, भोग, भिक्षा, वृत्ति, अपमान, तिरस्कार, लांछना, अपने अनाथ होने की पीड़ा तथा दूसरे और भी न जाने कितने नरक भोग के दंश तो आजीवन को स्वामी जी को सालते और कचोटते हैं, किंतु जीवन के मध्यांतर में राम की कृपा से वे उससे उबर पाते हैं। आदर्शवाद के मनोलोक में डूबते उतराते स्वप्नों के अपने गढ़े हुए समाज पर मुक्त होते हैं। गोस्वामी जी का यह स्वप्न दृष्टा अपने कल्पित मनोलोक में बहुत समय तक नहीं रह पाता और परवर्ती जीवन काल में समूचे आदर्शवाद और स्वप्नों के मोहजाल को छिन्न भिन्न करता अपनी सारी भयावहता को लिए जब कलिकाल उनके सामने प्रकट होता है वे स्तब्ध रह जाते हैं। एक तो वृद्धत्व और दूसरे रोग जर्जर शरीर उनके कल्पित स्वप्नों और आदर्शों की पूरी दुनिया जैसे उन्हीं की आंखों के सामने उन्हें ध्वस्त होते हुए दिखाई देने लगती है। वे त्राह त्राह कर उठते हैं। गोस्वामी जी के इसी भग्न मनोलोक से उपजे और भग्न मना स्थिति में मूर्त हुए उनके आत्मदर्शन और जग दर्शन के कुछ क्षणों के लिए हमें हम अंतरंग होना चाहते हैं। डॉक्टर मेघ ने बहुत सही कहा है कि काशी गोस्वामी जी के इस परवर्ती मनोलोक के उद्भव में एक अहम भूमिका निभाती है। यथार्थ या कहिए जीवन तथा समाज की रोमांचक सच्चाई से गोस्वामी जी का साक्षात्कार और उसके प्रति गोस्वामी जी की उन्मुखता का आरंभ बिंदु काशी ही है। यहाँ वे अपने से बाहर और अपने भीतर भी वह सब देखते हैं जो पहले आदर्शवादी सपनों के मनोलोक में डूबी अपनी चेतना के विलक्षण स्थितियों में वे नहीं देख पाए थे या उस तरीके से नहीं देख पाए थे जैसा कि अब देख रहे थे। अब वे अपने सामने और अपने चारों ओर देख रहे थे छल प्रपंच पाखंड और फरेब मक्कारी और धूर्तता से भरा एक पूरा का पूरा समाज रोग महामारी दरिद्रता भूख अकाल और नाना प्रकार की व्याधियां समाज तथा धर्म की ध्वजा उठाने वालों के असली चेहरे चाटुकारिता और चापलूसी स्वार्थों की आपाधापी में एक दूसरे का गला काटते लोग परिजन प्रियजन सगे संबंधी वह सब कुछ जो गोस्वामी जी की अपनी मनोदृष्टि और उनके अपने आकांक्षित समाज दर्शन और मूल्य व्यवस्था से बिल्कुल अजनबी बिल्कुल पराया था। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने विस्तार से इन सब का वर्णन किया है। करने का साहस अर्जित किया है पाप और अधर्म का कालुष्य और जीवन की अधमता का यह परिदृश्य गोस्वामी जी को भीतर तक आहत करता है। उन्हें अपने स्वप्न दृष्टा की खिल्ली उड़ाता लगता है। उन्हें यहाँ तक आहत और क्षत विक्षत करता है कि वे यह महसूस करने लगते हैं कि जैसे यह प्रचंड कलिकाल सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिशाली उनके राम से अधिक समर्थ और अधिक प्रभावी हैं। यह अनुभूत उन्हें हताश ही नहीं करती भयाक्रांत भी करती है। उन्हें अपने आतंक की चपेट में ले लेती है। किसी समय राम के भरोसे सुख से पांव पसार सोने की बात करने वाले गोस्वामी जी अब हर क्षण भयग्रस्त रहने लगते हैं। रात रात भर जागते रहते हैं, विकल होकर अर्थ पुकार करते हैं, अपनी व्यथा का इजहार प्रदर्शन करते हैं। दासत ही गई बीत निशा सब कबहु न नाथ नींद भर सोयो। अब वे अपने को निसहाय एकाकी और असमर्थ अनुभव करने लगते हैं। अंततः अपने उद्धार के लिए और जाएं तो जाएं भी कहां अपने साहेब अपने गरीब निवास राम के दरबार में जाकर अरदास करने फरियाद करने के अलावा और कोई उपाय नहीं देखते। वे उनके हुजूर में अपनी अर्जी पेश करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनके राम कलकार की जकड़न से उन्हें और समाज को मुक्त करें। तुलसी का यह मनोलोक उनके पूर्ववर्ती मनोलोक से एकदम भिन्न है जिसमें कभी वे आत्मतुष्ट राम की कृपा पाए हुए आशा आस्था और ऊर्जा से भरे निर्भीक विचरते हैं। विनय पत्रिका के ढेरों पद हमारे इन निष्कर्षों का साक्ष्य है। तुलसी का यह आत्मदर्शन और उनका यह जग दर्शन यथार्थ के जिन जीवित संदर्भों को सामने लाया है वे संदर्भ और उन्हें सामने लाने वाला यह यथार्थ तुलसी का यह परिवर्तित मनोलोक विनय पत्रिका की सिद्धि है। यह तुलसी से होने वाला ऐसा अंतरंग साक्षात्कार है जिसकी तुलसी की रचनाशीलता में अन्यत्र कोई मिसाल नहीं है। उनकी भक्ति भी यहाँ अपने समूचे उत्कर्ष में है। दास्य भाव की भक्ति प्रपत्ति की चरम भूमिका पर पहुंची हुई है। यहाँ दैन्य विनय ही विनय है, दैन्य है विनय ही विनय है। आत्मलक्षता की अनन्यता है, सेवा है, समर्पण है, आत्मपुकार है, क्या नहीं है यह भक्ति। अहेतुक निष्काम हर प्रकार के स्वार्थ से एकदम परे नितांत पारदर्शी और निर्मल है। जितना ही चरम तक पहुंचा हुआ यहाँ तुलसी का आत्मलोकता का भाव है उतना ही चरम तक पहुंचा हुआ उनका अपने आराध्य की महानता और बड़प्पन का आख्यान। राम सो बड़ो कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन मोसो कौन खोटो।